लक्षण है। आज का प्रातः क्लास तीस दस 1966 का चल रहा था। दूसरे पेज के अंत में बात चल रही थी कि मनुष्यों को अभी ये मालूम नहीं है कि हमको पतित किसने बनाया। हमारा राज्य जो पावन था वो राज्य फिर पतित कैसे बना, तो बाप बैठ करके बच्चों को समझाया कि रावण राज्य जब शुरू होता है तब फिर ये सभी देवताएं पतित बन जाते हैं। क्यों? रावण राज्य शुरू होता है तो देवताएं जिनको सर्वशक्तिमान बाप ने राज्य दिया वो पतित कैसे बन जाते? क्योंकि भगवान बाप जब संगम में आते हैं तो असुरों का जन्म पहले होता है, क्योंकि जो भी विधर्मी और विधर्मी के साथ साथ विदेशी आत्माएं हैं वो बाप को पहले पहचानती हैं। जो बाप को पहले पहचानती हैं वो बड़े हुए, जो बड़े बच्चे होते हैं वो पावरफुल होते हैं। और देव आत्माओं ने पहले नहीं पहचाना, जो पहचानते हैं वो ही बाप को प्रत्यक्ष करते हैं। विदेशी क्यों बाप को प्रत्यक्ष करते हैं? भारतवासी क्यों प्रत्यक्ष नहीं कर पाते? क्योंकि भारतवासी आत्माएं बहुत पुरानी हैं। बहुत पुरानी होने के कारण बहुत तामसी बन जाती है, और तामसी बुद्धि होने के कारण वो सत्य चित्त आनंद जिसे कहा जाता है, गॉड इज ट्रुथ जिसे कहा जाता है, ट्रुथ इज गॉड जिसे कहा जाता है, उस बाप को तामसी बुद्धि होने के कारण नहीं पहचान पाते। विदेशी आत्माएं नई नई आती हैं आत्मलोक से, सुप्रीम बोर्ड से, तो उनकी बुद्धि सात्विक होती है, बुद्धि में तीक्ष्ण होती है और बाप को झट पहचान लेती है। तो विदेशी और विधर्मी आत्माएं पावरफुल हो गई। शास्त्रों में भी आता है कि दीती कश्यप की पहली रानी थी, बड़ी रानी थी, जिस दिति से पहले दैत्य पैदा हुए और बाद में दूसरी रानी थी अदिति। उससे अद्वैत देवताओं का जन्म हुआ तो लाजमी है कि छोटे बच्चे बाप को बाद में पहचानते हैं और बड़े बच्चे बाप को पहले पहचान देते हैं। तो जिन्होंने बाप को बाद में पहचाना वो आत्माएं देवात्माएं छोटी हो गई। बाद में जन्म लेने वाली हुई और कमजोर होने के कारण जो शक्तिशाली दैत्य हैं दिति की औलाद वो पावरफुल बन जाते हैं। भले पावरफुल बन जाते हैं परंतु औलाद किसकी है? दिति। दिति अर्थात खंडित अखंड ब्रह्मचारिणी नहीं, खंडित। तो खंडित की औलाद होने के कारण व्यभिचारी होते हैं। वो देवताओं की तरह अव्यभिचारी नहीं होते। और ज्यादा पावरफुल व्यभिचारियों की संख्या संसार में बढ़ती जाती है। द्वैतवादी द्वापर युग से जब से ये विधर्मी और विदेशी आत्माएं आई उनका वाइब्रेशन पावरफुल हो जाता है और उस पावरफुल वाइब्रेशन के बीच वो थोड़ी सी देवात्माएं प्रभाव में आ जाती है, प्रभावित हो जाती हैं, पतित हो जाती हैं। इस 10:66 की वाणी का तीसरा पेज। अभी द्वापर के पीछे 2500 वर्ष, ऐसे समझना चाहिए 2500 वर्ष हुआ रावण को जन्म हुए। उससे पहले इस सत्य रूपी रंगमंच पर सतयुग त्रेता में देव आत्माओं का राज्य था। और वो देवात्माएं द्वैतवादी द्वापर युग से इन विदेशियों और विधर्मियों के संग के रंग में आकर के पतित बन गई। समझा ना? अच्छा, दैवी राज्य को 2500 वर्ष और इस विचारी रावण राज्य को 2500 वर्ष, टोटल मिलाकर के 5000 वर्ष हुआ। दैवी राज्य की स्थापना निराकारी निर्विकारी निरहंकारी सदैव आत्म की स्थिति में रहने वाला सदा शिव करते हैं, भगवान बाप करते हैं, जिसे एवर प्योर कहा जाता है। और उस विदेही आत्मा के मुकाबले जो देह अभिमानी रावण है, जिसके चरित्र को दिखाने वाला चित्र आज भी भारत में रामलीला होती है तो लंबा चौड़ा दिखाते, अर्थात बहुत देह अभिमानी। उस देह अभिमानी रावण राज्य को आना तो बाद में है, द्वैतवादी द्वापर युग से आना है। परंतु जब आते हैं तो उनके संग के रंग में देवात्माएं आत्माभिमानी से देह अभिमानी बनने लग पड़ती है, वो भी विचारी होने लग पड़ती है। माना शिव बाबा के जन्म को इस सृष्टि पर कहें 5000 वर्ष हुआ और रावण के जन्म को 2500 वर्ष। जिनको 5000 वर्ष हुआ उनको राम भी कह देते हैं, राम अर्थात जिसमें योगी लोग रमण करते हैं, भोगी नहीं। रावण है भोगी, राम है योगी। तो उनको रुलाने वाला रावण कहा जाता है और उनको रमण कराने वाला राम कहा जाता है। कहीं में रमण कराने वाला अति इंद्रिय सुख में रमण कराने वाला, अभी अभी माने कभी अभी कलयुग के अंत में संगम युग में जिसे कलयुग का अंत और सतयुग के आदि का संगम कहें, तो अभी उनको राम कहना नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि वो राम वाली आत्मा अभी अभी माने कभी 1966 में स्वयं पुरुषार्थी जीवन में है, या संपन्न जीवन है, पुरुषार्थी जीवन है। किस बात का पुरुषार्थी? इंद्रियों का रस लेने का 63 जन्म से जिसका स्वभाव पड़ा हुआ है, वो इंद्रियों के सुख को तिलांजलि दे करके तीव्र याद का पुरुषार्थ करके अतीन्द्रिय सुख में रमण करने वाला पहला पुरुषार्थी बनता है। वो तो बाद में बनेगा, पहले बनेगा या बाद में बनेगा? पुरुषार्थ संपन्न होगा तो बनेगा। तो अभी उनको राम नहीं कहना चाहिए, उनको मुझको नहीं। कौन बोला?
शिव बाप
बोला कि उनको जो राम राज्य स्थापन करते हैं कोई भी राज्य की स्थापना होती है तो युद्ध करते हैं, युद्ध में विजयी होते हैं तो राज्य पाते हैं। तो पहले युद्ध करना पड़ता है माया रावण से, युद्ध में विजयी होते हैं तो कहेंगे संपन्न हुए। जब तक विजयी नहीं होते हैं तब तक पुरुषार्थी जीवन है। लेकिन भगवान बाप आकर के आदत देते हैं, बच्चे अंतिम विजय तुम्हारी है। अभी भले इंद्रियों से जो सुख लेने का अभ्यासी जीवन है उसमें ये इंद्रियों का सुख, देहभान का सुख भले तुम्हें परास्त करता है, लेकिन हिम्मत है बच्चे, मदद है बाप। अगर अंत तक हिम्मत कायम रहेगी तो अंतिम विजय तुम्हारी हो जाएगी। अभी उनको राम नहीं कहना चाहिए। रम्यते योगिनो यस्मिनीति राम, योगी लोग जिसमें रमण करते हैं वो राम। योगी माने याद करने वाले। तो वो अतीन्द्रिय सुख में रमण कराने वाला अभी नहीं कहा जा सकता। कब की बात?
जब बुरे चलाए
तब तक की बात है, जब तक ज्ञान सूर्य बाप चैतन्य ज्ञान सूर्य शिव इस सृष्टि पर प्रैक्टिकल में प्रत्यक्ष नहीं होता है, सूर्य निकलता है तो दुनिया में चारों ओर रोशनी हो जाती है, या कहीं अंधेरा कहीं रोशनी, रोशनी हो जाती है चारों ओर। हर मनुष्य आत्मा के अंदर ज्ञान की रोशनी आ जाती है कि मैं कौन और मेरा बाप कौन। तो क्या कहें, अभी जब उनको राम नहीं कहना चाहिए पुरुषार्थ जीवन में, तो भगवान बाप शिव प्रैक्टिकल में ज्ञान सूर्य की तरह प्रत्यक्ष हुआ या नहीं हुआ, क्या कहें? क्यों? क्योंकि अभी आज निश्चय बुद्धि बनते हैं और कल अनिश्चय बुद्धि बन जाते हैं। आज ज्ञान की रोशनी में अनुभव करते हैं और कल अज्ञान अंधेरे में आ जाते हैं, बाप को भूल जाते हैं। तो देखो अभी राम वाली आत्मा राम है या रावण है?
मुझे रावण बनता है, इसलिए बताएं।
बनता है? अभी क्या है?
पुरुषार्थी है।
हाँ, पुरुषार्थी है। पुरुष माने आत्मा, पुरु माने शरीर, रूपी पूरी, और उस शरीर रूपी पुरी में माना शेते शयन करता है, आराम करता है। तो अभी आराम का अनुभव होता है या मेहनत का अनुभव होता है पुरुषार्थी जीवन में? मेहनत का अनुभव होता है। जहां पक्की पक्की मोहब्बत होती है वहां मेहनत अनुभव नहीं होती है। इससे साबित होता है कि राम अभी राम नहीं है। जिसमें योगी लोग रमण कर रहे हैं अतीन्द्रिय सुख में, वो राम स्वयं भी इंद्रियों के सुख में व्यस्त हो जाता है। 63 जन्म का अभ्यास न होने के कारण परिपक्व स्टेज को नहीं प्राप्त कर सकता, और तब तक नहीं प्राप्त कर सकता जब तक के सदा स्वयं स्थिति में रहने वाला बाप उस राम वाली आत्मा में सदाकाल के लिए प्रत्यक्ष न हो जाए। जैसे बच्चा जन्म लेता है तो कोई कहता है कि बच्चे का जन्म नहीं हुआ, जो सुनेगा हुआ हुआ की आवाज पड़ोसी भी सुनेगा तो कहेगा पड़ोसी में बच्चा पैदा हुआ। कानों से आवाज सुनेगा और कहेगा बच्चा आया, आंखों से देखेगा तो कहेगा बच्चा आया। ऐसे ही भगवान बाप जब प्रैक्टिकल में इस संसार में प्रत्यक्ष होते हैं, जिसकी यादगार है महाशिवरात्रि, इस दुनिया की बड़े से बड़ी अंधकार की रात्रि। कैसी अंधकार की रात्रि? अज्ञान अंधकार की रात्रि। 500-700 करोड़ की दुनिया तो अज्ञान अंधेरे में है ही, क्योंकि अपन को देह समझती है, विनाशी देह, अपन को अविनाशी आत्मा नहीं समझते हैं। तो अज्ञानी है या ज्ञानी है? अज्ञानी। लेकिन जब बाप इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर महाशिवरात्रि में प्रत्यक्ष होता है जैसे बच्चा प्रत्यक्षता रूपी जन्म लेता है, तो जो इन आंखों से देखे उस बाप को वो क्या कहे, मेरा बाप आ गया। ये नहीं कि अभी अभी कहे मेरा बाप आ गया और फिर कल कहने लगे हम तो मुगालते में आ गए थे, हमको पक्का निश्चय तो हुआ नहीं था, निश्चय निश्चय के चक्र में थे। निश्चय माने जन्म लिया बाप का बच्चा बना, अनिश्चय माने मृत्यु हो गई बाप का बच्चा नहीं रहा। तो अभी जन्म मृत्यु का चक्र चल रहा है। जो राम वाली आत्मा है, मनुष्य सृष्टि का बीज, वो भी अभी रावण संप्रदाय है, रावण है या राम है, रावण संप्रदाय। लेकिन जब बाप प्रत्यक्ष होते हैं, आत्माओं का बाप, महाशिवरात्रि पर, तो बाहर की दुनिया अज्ञान अंधकार में होती ही है, पहले भी थी अभी भी है। लेकिन जो अपन को ब्रह्मा कुमार कुमारी कहते हैं, वो भी अज्ञान अंधकार में हो जाते हैं, बाप को नहीं पहचानते। जो बाप इस सृष्टि पर प्रैक्टिकल रूप में कोई निश्चित मुकर्रर मनुष्य तन में आकर के पार्ट बजाते हैं, पहचान देते हैं ब्रह्मा महावाक्यों के द्वारा, फिर भी नहीं पहचान पाते। उन बेसिक ब्राह्मणों की बात छोड़ दो, जो अपन को एडवांस का ब्राह्मण समझते हैं कि हम एडवांस ब्राह्मण हैं, वो भी आज निश्चय रूपी जन्म लेते हैं, बाप का बच्चा बनते हैं और कल काल अनिश्चय रूपी मृत्यु हो जाती है। परंतु जब बाप प्रत्यक्ष होते हैं महाशिवरात्रि पर, सारे संसार में अज्ञान अंधकार, ब्रह्मा के पुत्रों में भी अज्ञान अंधकार, ब्रह्मा में भी अज्ञान अंधकार, और जो अपन को प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कहते हैं उनमें भी अज्ञान अंधकार। बाप तो प्रत्यक्ष होते हैं, लेकिन पहले गुप्त पार्ट बजाते हैं या प्रत्यक्ष पार्ट बजाते हैं। जैसे बच्चा पहले गर्भ में गुप्त है, जब प्रत्यक्षता रूपी जन्म लेता है तो प्रत्यक्ष है। ऐसे ही जिस तन में वो भगवान बाप मुकर्रर रूप से प्रत्यक्ष होते हैं संसार के सामने, सारे संसार के सामने, वो तन पहले गुप्त होता है, गुप्त पार्टधारी होता है, और बाद में महाशिवरात्रि पर प्रत्यक्ष हो जाता है। जैसे बच्चा प्रत्यक्ष हो जाता है। तो देखो ये बात समझाई कि अभी राम को भी रम्मिते योगिनो यस्मिन इति राम नहीं कहना चाहिए, जिसमें योगी जन रमण करें अतीन्द्रिय सुख में, क्योंकि वो राम भी अभी रावण है, स्वयं इंद्रियों के सुख में लिप्त होने वाला है या अतीन्द्रिय सुख में लिप्त होने वाला है? है इंद्रियों के सुख में लिप्त होने वाला है। इंद्रिय जीते जगत जीत नहीं कहेंगे, कहेंगे अभी नहीं कहेंगे। जब इंद्रियों को जीत आई नहीं, मन जीते जगत जीत कहा जाता है। मन रूपी ब्रह्मा कहो, बैल कहो, उसको ना था ही नहीं, उसके ऊपर कंट्रोल कर ही नहीं पाया। तो राम भी अभी रावण है और द्वैतवादी द्वापर युग से कहते हैं रावण आता है। तो किस आत्मा की तरफ इशारा है? बाबा का इशारा कि द्वैतवादी रावण युग वो द्वापर युग से द्वैतवादी, इसलिए कि दो दो भाषाएं, दो दो राज्य, दो दो धर्म, दो दो कुल, दो दो मतें शुरू हो जाती है। तो बाबा का इशारा किस आत्मा की तरफ है कि द्वैतवादी द्वापर युग से रावण राज्य शुरू होता है? अरे रावण के 10 सिर हैं, तो 10 सिरों में कोई तो मुखिया होगा। कौन?
ब्रह्मा।
ब्रह्मा मनुष्य है, या मनुष्य वेश में जानवर बुद्धि है? चलो बच्चा भी बुद्धि का उपयोग करता है और जानवर भी उपयोग करता है। तो जो मन बुद्धि का उपयोग ही नहीं करता वो जानवर में चल हो गया। इसलिए बैल दिखाते हैं, घोड़ा भी कह सकते हैं। भगवान बाप ने भी बोला हुआ है त्रिमूर्ति में, एक शेर है, एक घोड़ा है और एक बकरी। तो घोड़ा कौन हुआ? मन रूपी घोड़ा हुआ। अगर उसे लगाम नहीं लगाई तो गड्ढे में ले जाएगा। लगाम लगाई दी, बैल को नाथ डाल दी तो कंट्रोल हो जाएगा। तो देखो अभी भी जिसे बुद्धि कहा जाता है जो बुद्धि मन को कंट्रोल करती है, जिसका गीता में भी वर्णन है, इंद्रियां बड़ी प्रबल हैं, 10 इंद्रियां हैं, बड़ी प्रबल हैं, और इंद्रियों से भी प्रबल मन है, 11वीं इंद्रिय। इंद्रिय से भी, ग्यारहवीं इंद्रिय से भी प्रबल है बुद्धि। तो कोई संसार में ऐसी शख्सियत हुई है, कोई चित्र ऐसा मिला है चरित्र करने वाला मिलता है, जिसकी सबसे जास्ती मूर्तियां मिली हो, जिसको तीसरा बुद्ध रूपी नेत्र दिखाया जाता है, कौन है? शंकर। उसे शंकर कहो या रामवाली आत्मा कहो, सारे मनुष्य षष्ठि वृक्ष का बीज है, लेकिन उस तीसरे रूप, तीसरे नेत्र रूपी बुद्धि को भी कंट्रोल करने वाला बुद्धिमानों की बुद्धि कहा जाता है। वो बुद्धिमानों की बुद्धि है भगवान बाप, जिसे मुसलमान अल्लाह कहते हैं, ऊंचे से ऊंचा। अंग्रेज लोग उसे गॉड फादर कहते हैं, हिंदू लोग कहते हैं ऊंचे से ऊंचा भगवान, मानते भी ऊंचा तेरा नाम, ऊंचा तेरा धाम, ऊंचा तेरा काम। नाम भी ऊंचा है क्योंकि काम ऊंचा किया है, और धाम भी ऊंचा है रहने का स्थान। तो वो बुद्धिमानों की बुद्धि बाप महाशिवरात्रि पर इस सृष्टि पर आते हैं, और किसमें आते हैं? वो ही राम वाली आत्मा में आते हैं, जो राम वाली आत्मा गुप्त गर्भ में रह करके गुप्त पार्ट बजाती है। ऐसे नहीं है कि नहीं है, है, लेकिन गर्भ जेल में है या गर्भ महल में है? जेल में, बंधन में। जैसे रावण भी देह के बंधन में है, देह अभिमान के बंधन में है, स्वयं भी विकारों के बंधन में है, और दूसरों को भी विकारों के बंधन में डालता है। तो जो दूसरों को बंधन में डालता है, वो खुद भी रोता है और दूसरों को भी रुलाने वाला रावण कहा जाता है। तो राम अभी स्वयं रावण है, रावण संप्रदाय है, क्योंकि राम तो सीता का पति है। क्या? सीता का पति है, और सीता अभी रावण की जेल में है, रावण की कैद में है, या राम के कंट्रोल में है? पत्नी पति के कंट्रोल में होना चाहिए ना। तो राम की सीता राम के कंट्रोल में है या रावण के कंट्रोल में है? रावण के कंट्रोल में। तो देखो, वो सीता तो रावण संप्रदाय में है, परंतु यहां तो मनुष्यों के बहुत नाम है। मनुष्यों का एक नाम होता है क्या? रामचंद्र, कृष्णचंद्र, नारायण, लक्ष्मी, लक्ष्मी नारायण, बहुतों ने नाम रख दिए, इस लोक बनाए दिया है, अच्युतम। च्युत माने नीचे गिरना, ये च्युत हो गया, चू गया। तो जो च्युत होके नीचे गिरा उसका नाम च्युत, और नाम बढ़ गया। जो नीचे नहीं गिरा वो अच्युत, तो उसका नाम अच्युत रख दिया है। किसका? राम की बात हो रही है। राम का नाम अच्युत रख दिया, तो क्या कहें कि वो राम वाली आत्मा जो शंकर में त्रिमूर्ति देवताओं के बीच में शंकर का पाठ धारी है, वो अमोघ वीर्य है, है? अमोघ वीर्य सदा काल का है, है? नहीं है। अगर अमोघ वीर्य सदा काल का है तो अच्युतम नाम होना चाहिए, जो कभी नीचे न गिरे, शक्ति क्षीण ना हो, कभी ही ना हो, तो अच्युत मन। शिव के मंदिर यादगार बने हुए हैं, वो शिव है जिसकी पूजा होती है। पूजा का आधार क्या होता है? है? पवित्रता। और जहां पवित्रता क्षुण्ण होगी तो पतित होगा, शक्तिपात होगा। शक्तिपात नहीं हो सकता, उसकी यादगार है शिवलिंग शिव के मंदिरों में। कहां रखा हुआ है? स्त्री चोले में रखा हुआ है, जलाधारी में रखा हुआ है। जलाधारी का मतलब यह है जल को धारण करने वाली, स्थूल जल नहीं। कौन सा जल? ज्ञान जल को जीवन में, प्रैक्टिकल जीवन में धारण करने वाली। वो ज्ञान जल को प्रैक्टिकल जीवन में जो धारण करती है उसको श्रेय मिलता है भगवान बाप से, कि तुम ही शिव की शक्ति हो और शिव की शक्ति बनकर के तुम स्वर्ग के गेट खोलते लाए। और पुरुष साफ दुर्योधन दुशासन, उनको वो टाइटल नहीं दिया। किनको? पुरुषों को, क्योंकि पुरुष स्त्री चोले के संपर्क में संसर्ग में आकर के कमजोरी में आते। पुरुष की कमजोरी है स्त्री, तो जो अंदर कमजोरी भरी हुई है वो पतन में लाती है, शक्तिपात कराए देती है। शक्तिपात होने के कारण वो पुरुष है स्वर्ग के गेट खोलने के निमित्त है नहीं बन पाते। और स्त्री चोला अगर सूपनखा पूतना की लिस्ट में नहीं है तो वो स्त्री चोला क्या बताए? शिव की शक्ति बनता है। सर्वशक्तिमान में जो शक्ति भरी हुई है उस शक्ति को खींचने वाली बनती है। वो शिव शक्ति भारत माता कही जाती है। भा माने रोशनी, रत माने लगा रहने वाला। ज्ञान की रोशनी में लगा रहने वाला और सब ब्राह्मण जानते हैं कि जब ज्ञान में मनन चिंतन मंथन चलता है तो अवस्था ऊंची उठती है और जब ज्ञान की रोशनी में मनन चिंतन चलना बंद हो जाता है तो उसका एकमात्र कारण बताया क्या? शक्तिपात, अपवित्र होना। जब अपवित्र बनते हैं तो बुद्धि ज्ञान में चलना बंद हो जाती है। तो जैसे ज्ञान बल कहा जाता है, ज्ञान बल का कारण क्या हुआ? जितनी पवित्रता को धारण करेंगे उतना ज्ञान बल आएगा। आप पवित्र बनेंगे तो ज्ञान बुद्धि में से उड़ जाए। तो यही बात राम अभी रावण क्यों है? क्योंकि राम को ही जो शक्ति है, पत्नी है, वो रावण के कंट्रोल में है। रावण के कंट्रोल में होने के कारण रावण उसे पतित बनाएगा कि पावन बनाएगा? है, पतित बनाता है। तो राम की शक्ति कहो, रामायण की शक्ति कहो, नारायण की शक्ति कहो, एक ही बात है या अलग अलग बातें हैं? एक ही बात। नारायण की शक्ति लक्ष्मी कौन है? नारायण की शक्ति लक्ष्मी। तो लक्ष्मी जो नारायण की शक्ति कहें या राम की शक्ति कहें, वो अभी किसके कंट्रोल में है? रावण के कंट्रोल में है। और रावण के कंट्रोल में जब तक शक्ति है, वहां से मुक्त नहीं होती है, तब तक राम भी क्या है? रावण है, रावण संप्रदाय है या राम और राम संप्रदाय है? रावण संप्रदाय। वो शक्ति जो विजयमाला तैयार करती है, विजय प्राप्त करता कराती है, विजय का कारण क्या? प्योरिटी, प्योरिटी से यूनिटी। इम्प्योरिटी खंडन कराए देती है, यूनिटी को तोड़ देती है। तो देखो शास्त्रों में दिखाया है कि शंकर से बिच्छू टिंडन पैदा हुए। बिच्छू टिंडन दुख देने वाले होते हैं या सुख देने वाले होते हैं? है? सुख देने वाले, दुख देने वाले होते हैं। बाबा भी कहते हैं आज जो बच्चे पैदा हो रहे हैं वो बिच्छू टिंडन मिसल पैदा हो रहे हैं, माँ के ही पेट को फाड़ के पैदा हो रहे हैं। जो जन्मदात्री माँ है उसी को जो दुख देता है, वो दुनिया में किसी को दुख देने बगैर छोड़ेगा? छोड़ेगा? किसी को नहीं छोड़ेगा। तो देखो वो विजय माला का वो शहद की मक्खियों की रानी कहो, वो जब उड़ती है रावण संप्रदाय से और राम संप्रदाय की तरफ जाती है, इस दुनिया में तो राम अभी कोई है नहीं, तो कहां जाती है? निराकार राम की तरफ जाती है या साकार राम की ओर जाती है? बाप कहते हैं इस दुनिया में सदा काल कायम कोई चीज नहीं है, सदा काल कायम सिर्फ है एक शिव बाबा है। तो जो एक शिव बाबा सदा काल कायम है वो कहां कायम है? वो शिव कहां कायम है?
तो बाबा साहेब थोड़े समय की अलावा ज्यादा समय परंपरा में रहने वाला है, लेकिन इसमें वो प्रवेश करते हैं तो सदा कायम
है। इस दुनिया में कहां कायम है? गुप्त ज्ञान गर्भ में कायम है, बाहर की दुनिया में कायम नहीं है। जैसे बच्चा पहले निर्जीव होता है पेट में, वो शव है या चैतन्य है? शव माने मुर्दा, कोई हलन चलन नहीं। फिर जब सोल आके प्रवेश करती है तो हलन चलन शुरू होती है चार पांच महीने के बाद। ऐसे ही इस ब्राह्मणों की संगमी की दुनिया में 40 वर्ष के बाद 76 में वो गर्भ जेल में रहने वाली जो राम वाली आत्मा है, जो ज्ञान के आधार पर प्रत्यक्ष होती है, उसमें बाप प्रत्यक्ष होता है। कौन सा बाप? आत्माओं का बाप प्रत्यक्ष होता है, लेकिन दुनिया में प्रत्यक्ष है? दुनिया में प्रत्यक्ष नहीं है, चाहे उसे एडवांस ब्राह्मणों की दुनिया कहो चाहे बेसिक ब्राह्मणों की दुनिया कहो चाहे बाहर की दुनिया कहो 500-700 करोड़ की, वहां भी प्रत्यक्ष नहीं है। तीनों दुनिया में प्रत्यक्ष नहीं है। कहां है? है तो इस दुनिया में, परंतु गुप्त में पार्ट बजाए रही है। गुप्त ज्ञान गर्भ में है, इसलिए जो मनुष्य हैं मनन चिंतन मंथन करने वाले हैं, ज्ञान में आके ब्राह्मण भी बनते हैं ब्रह्मा की औलाद, उनको भी 100% निश्चय नहीं हो पाता कि है या नहीं है। आज लगता है कि है और कल अनिश्चय में चले जाते हैं। तो सन 76 से भी लेकर के अब तक जो शव था सन 76 से पहले मुर्दा को चैतन्य कहेंगे है? नहीं, जब उसमें सोल हो तो मुर्दा नहीं है। तो बताया कि या तो शिव है या तो शव है। शिव कब है वो भी बता दिया। तुम बच्चे मेरे को जितना याद करते हो उतना मैं तुम्हारे साथ हूं। क्या? जितना तुम मुझे याद करते हो उतना मैं तुम्हारे साथ हूं। तो याद करने वालों बच्चों में वो राम वाली आत्मा भी है या नहीं है? है तो मुकर्रर, परंतु उसके लिए भी अभी यही कहेंगे कि वो जितना याद करता है उतना उसके साथ है। याद नहीं करता है तो शिव है, या तो शिव है या तो शिव है। इसलिए बोला राम वाली आत्मा को भी अभी वास्तव में राम नहीं कहना चाहिए, जिसमें योगी लोग अतीन्द्रिय सुख में रमण करते हो। बोला उसके नाम तो बहुत रख दिए, किसके? राम के। अच्युतम केशवम राम नारायणम कृष्ण दामोदरम वासुदेवम हरम श्रीधरम माधवम गोपिका वल्लभम जानकी नायकम रामचंद्रम भज। इतने नाम रख दिए हैं एक के, तो वो नाम काम के आधार पर है ना। अच्युतम अभी कहें आ माने नहीं, च्युतम माने गिरने वाला। शक्ति से पात न होने वाला अमोघ वीर्य भी है, सदा काल के लिए है, है?
नहीं है।
हाँ ये कह सकते हैं कि 500 करोड़ मनुष्यों के बीच में वो एक ऐसा पुरुषार्थी हो सकता है जो और मनुष्यों के मुकाबले पुरुषार्थियों के मुकाबले ज्यादा तीव्र पुरुषार्थी है, फिर भी सदा काल के लिए अभी अमोघ वीर्य नहीं है। माना उसकी भी शक्ति कुछ न कुछ क्षीण होती जरूर है। शक्ति क्षीण होना बंद हो जाए सदा काल के लिए, वो तब ही हो सकता है जब निरंतर याद में रहे। इसलिए बोल दिया तुम मुझे जितना याद करते हो उतना मैं तुम्हारे साथ हूं, नहीं याद करते हो तो मैं तुम्हारे साथ नहीं हूं।